ओम शांति। परमात्मा पिता की एक ऐसी प्रतिकृति आप शिलुबेन जी कि जिसका नाम ही प्रत्यक्ष करता, क्योंकि शिलु का अर्थ है पत्थर या चट्टान, कि जो कोई भी परिस्थितियों में अटल, मजबूत, सदा रह करके अपने कार्य में अग्रसर होते हैं। दूसरा, ये ऐसी प्रभावशाली आत्मा, बुद्धिमान आत्मा धीर गंभीर प्रकृति वाली ऐसी आत्मा कि जो अपने इस व्यवहार चलन कर्म उसके जरिए परमात्मा पिता को हर आत्मा के समय या विश्व के समक्ष प्रत्यक्ष कर रहे हैं और उसी कार्य अर्थ जिन्होंने अपना जीवन इस सेवा में लगाया है और वे इस कार्य को विश्व पांचों महाद्वीपों और 70 से भी अधिक देशों में जिन्होंने इस पिता का प्रचार करने के लिए भ्रमण किया है, उसके साथ साथ आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं निर्देशिका है राजयोग शिविर की, वाइस चेयरपर्सन शिक्षा प्रभाग राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के फाउंडेशन माउंट आबू, टीवी चैनलों पर भी आपने अनेक आप प्रवक्ता रही है, महासम्मेलनों में भी वक्ता रहे हैं और अनुवादक भी है। तो ऐसी ये महान हस्ती आज हम सबको उस परमात्मा पिता का परिचय कराएगी कि कैसे परमात्मा पिता आकर के इस विश्वविद्यालय के द्वारा किस तरह से ये कार्य करा रहे हैं, कैसे उन्होंने कार्य शुरू किया। तो इस यज्ञ की इतिहास के द्वारा हमारे को वो अवगत कराएंगे कि परमात्मा कैसे इस कार्य को कर रहे हैं और इस कार्य के द्वारा या हमारे द्वारा कैसे इस विश्व को फिर से महान भारत या सोने की चिड़िया जो भारत कहलाता वो कैसे कार्य करा रहा है। शिलुबेन जी ओम शांति।
ओम शांति। सभी एक साथ फिर से बोलेंगे ओम शांति। मेरे बाद ओम शांति। आप सभी शांति प्रिय आत्माएं हो, प्रभु प्रिय भी हो, ईश्वर की बातें सुन रहे हो, जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है वो आप सुबह से लेकर रात्रि तक सुन रहे हो। हमारी मीठी प्रतिभा बहन ने यही कार्य किया। सारा दिन लोग आते थे और वो ज्ञान की सेवा उनकी करती थी, तो उनसे आपका प्यार था, तो उन्होंने जो अपने जीवन में धारण किया लाया वो आप भी अवश्य करेंगे। यही हम उम्मीद करते हैं। तो जहां आप आए हैं, इस स्थान के महत्व को आपने अभी समझ लिया होगा। आप कहां आए हैं? ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कोई साधु महात्मा बैठा हो, कोई सत्संग कर रहा हो, कोई गुरु गुसाई हो, कोई कथा वार्ता चल रही हो, कीर्तन भजन चल रहा हो, पूजा पाठ चल रहा हो। ये वो रूप, वो स्थान नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय होते हैं ना, वहां पर पढ़ाई होती है, लक्ष्य होता है। तो यहां भी भगवान ने हमें बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है। क्या लक्ष्य दिया है? कि नर ऐसी करनी करे तो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे तो नारी श्री लक्ष्मी बने। नर नारायण कैसे बने, नारी लक्ष्मी कैसे बने, उसकी पढ़ाई यहां पढ़ाई जाती है। लेकिन परमात्मा को कैसे पढ़ा रहे हैं, किस द्वारा पढ़ा रहे हैं, कैसे इस संस्था का आरंभ हुआ और आज हम सब कहां पहुंचे हैं, ये बातें आज हम आपको बताना चाहेंगे। क्योंकि आप भी सोचते होंगे कि ये संस्था कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, तो वो मैं आपको कुछ चित्रों के माध्यम से सुनाना चाहूंगी, एक कहानी के रूप में आपको बताना चाहूंगी। या हम कहें कि आप जहां आए हो, यह एक बहुत बड़ा यज्ञ है। जैसे यज्ञ होता है ना, वो क्यों यज्ञ रचा जाता है, यज्ञ क्यों रचा जाता है? कोई आपत अगर आती है, कोई ऐसी विपत्ति आती है, तो यज्ञ रचते हैं ताकि वो आपदा या विपत्ति खत्म हो जाए। तो आज भी दुनिया में बहुत बड़ी आपदा आई है, धर्म ग्लानी की आपदा, जो भगवान के मां वाक्य है कि जब जब संसार में धर्म ग्लानी होती है तब तब मैं आता हूं। तो अभी वो यही समय है जो आपको उषा बहन ने बताया होगा। तो कैसे परमात्मा अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं, वो आपको हम बताना चाहेंगे, ताकि इस विश्व का परिवर्तन हो जाए। जो आज घोर कलयुग है, नरक बन गया है, वो फिर से सतयुग बन जाए, नर नारायण बन जाए, नारी लक्ष्मी बन जाए, मानव देव बन जाए। तो क्या है इसका इतिहास और उसके लिए कौन निमित्त बना, जिसको हम पिता श्री ब्रह्मा बाबा कहते हैं, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संस्थापक है, कैसे उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया और उसके कारण, उसके आधार से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो वो कहानी के रूप में हम आपको बताना चाहेंगे। उनका अलौकिक नाम जो परमात्मा ने उनको दिया वो था ब्रह्मा बाबा। ये उनका शारीरिक नाम नहीं है, लेकिन परमात्मा ने उनको ये अलौकिक नाम दिया। तो कौन थे ब्रह्मा बाबा और वो प्रजापिता ब्रह्मा कैसे कहलाए, वो आज हम आपको बताएंगे। प्रजा का पिता, सारी सृष्टि जो प्रजा है उसका पिता। हम जगत अम्बा की पूजा करते हैं, सारे जगत की अम्बा, तो जगत का पिता कौन? आप पुष्कर गए होंगे, वहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये कौन है ब्रह्मा? कहते आदि पिता जिसने दुनिया रची। तो वो प्रजा पिता ब्रह्मा कौन, वो कैसे आया, कब आया? ऐसे तो नहीं दुनिया थी नहीं, दुनिया तो सदा ही थी, लेकिन पुरानी से नई बनती है। जैसे रात से दिन होता है, इसी प्रकार कलयुग से सतयुग होता है, फिर सतयुग से कैसे कलयुग आता है, फिर कलयुग को सतयुग बनाने लिए परमात्मा को हस्तक्षेप करना पड़ता है। जैसे रात को दिन बनाने लिए सूर्य को उदय होना पड़ता है, तो परमात्मा है ज्ञान सूर्य। कहा जाता ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो परमात्मा ज्ञान सूर्य प्रगट होकर अज्ञान अंधकार का विनाश कर रहे हैं, ये हम आपको आज बताएंगे। तो कैसे उन्होंने एक बीज डाला, अपने तन मन धन का बीज डाला, और वो बीज आज इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया है जो 137 देशों में हमारे सेवा केंद्र हैं, 137 देशों में। और हमारे जैसी हजारों बहनें उनमें इस संस्था में समर्पित हैं, जिसमें प्रतिभा बहन भी पिछले 50 सालों से समर्पित थी, हम भी पिछले 60 सालों से समर्पित हैं। तो कैसे हमने पिताश्री ब्रह्मा बाबा को देखा है, बहुत उनसे ज्ञान प्राप्त किया, और हम तो कहेंगे कि उनको देखकर ही हमारा जीवन कैसे बदल गया और हमारे सच्चे अलौकिक पिता बने। तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा का पूर्व नाम दादा लेखराज था। दादा कह के उनको सब पुकारते थे, सिंधी भाषा में बड़ी बड़े भाई को दादा कहते हैं, जैसे हाँ बड़ी बहन को दादी कहते हैं, हिंदी में बड़े भाई को हाँ पिता समान ही मानते हैं, बड़ी बहन को दीदी कहते हैं। तो वैसे ही सिंधी भाषा में बड़े भाई को दादा कहते हैं। अब दादा लेखराज के नाम से वो प्रसिद्ध जौहरी थे, बहुत उनका नाम था। कलकत्ता में उनका बहुत बड़ा दुकान था, जहां हीरे जवाहरातों के जेवर बेचते थे, और राजा महाराजा लोग उनके ग्राहक थे। अंग्रेज लोगों का समय था, अंग्रेजों का समय था भारत में, तो अंग्रेजों का ही राज्य था, तो वो भी आते थे इनके दुकान में हीरे जवाहरातों के जेवर खरीदने के लिए। तो उनकी तो बाबा की बैठक अंग्रेजों के साथ और राजाओं के साथ थी, पर बहुत रॉयल थे, बहुत रॉयल। राजा महाराजा लोग कहते थे कि लखीराज, हाँ उनको लखीराज बाबू के नाम से पुकारते थे, आप इतने रॉयल हो जैसे कोई महाराजा हो। भगवान ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी, आपको तो एक व्यापारी बना दिया और हमको राजा बनाया, आपको राजा बनाना चाहिए था, वो कहते थे बाबा को। तो बाबा कहते थे भगवान कभी भूल नहीं कर सकता है, आपका अपना पार्ट है, अपना भाग्य है, मेरा अपना भाग्य है। तो इसीलिए लखीराज बाबू के नाम से वो प्रसिद्ध थे। उनका परिवार 5 बच्चों का था, 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे, और बहुत अच्छा परिवार, बहुत खानदानी परिवार, शांति प्रिय परिवार। तो व्यापार भी बहुत अच्छा था, परिवार भी बहुत अच्छा था, और बहुत दानी थे, बहुत दानी। जो भी उनके द्वार पर आता था वो कभी भी हाथ खाली नहीं जाता था, कुछ न कुछ उनको भेंट जरूर करता था। और साधु संत महात्माएं भी उनके घर में आते थे और सत्संग करते थे और वो भी बहुत भक्त था, खास करके विष्णु की भक्ति करता था। तो जितना ही धनी था उतना ही दानी था, उतना ही बड़ा भक्त था। तो विष्णु की भक्ति बहुत करते थे। कोई मंदिर नहीं था जहां बाबा दर्शन करने लिए न गए हो, सब जगह गया। अमरनाथ की यात्रा भी की थी, सब जगह वैष्णो देवी, अमरनाथ, बाबा श्रीनाथ द्वारा, जो खास यहाँ राजस्थान में है श्रीनाथ, तो वहां भी जाते थे और बहुत पूजा करते थे। हर साल बड़ा भोग लगवाते थे श्रीनाथ में। तो देखते हैं कि कैसे विष्णु की भक्ति करते थे। बहुत गुरु किए उन्होंने, बहुत शास्त्र पढ़ डाले, लेकिन उनके अंदर में खोज थी, सत्य को जानने की खोज थी, ईश्वर को जानने की खोज थी। भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, ये जानने की खोज थी। और इतना दुख संसार में देखकर बाबा को लगा कि हे भगवान, आपने क्या ऐसी दुख की दुनिया रची है? कभी इस संसार में सुख था ही नहीं? तो ये प्रश्न उसके मन में बहुत उठते थे, लेकिन जवाब उसको कहीं मिलता नहीं था। अपने गुरुओं से भी बहुत प्रश्न किए, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था। तो जब उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की थी, 60 वर्ष, बच्चे पोतरे दोतरे सब थे, बहुत 60 वर्ष की उम्र में भक्ति भावना तो उनकी बहुत थी, और उसी भावना के आधार से वो बहुत विष्णु की भक्ति करते थे। तो कैसे एक दिन की बात है कि अचानक बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। विष्णु चतुर्भुज उनके सामने आकर के उपस्थित हो गए, उनको दर्शन दिया। शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु उनके सामने आकर उनको वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तत्त्वम, मैं चतुर्भुज विष्णु हूं, तुम भी मेरे जैसे हो। ये बाबा को वरदान मिला। तो बाबा को तो समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। बाबा जब ध्यान से उतरे तो बाबा ने कुछ भी नहीं समझा। विष्णु के कई रूप उनके सामने आते गए, एक एक अलग अलग विष्णु का रूप। कई मंदिर है विष्णु के, श्रीनाथ, द्वारका, द्वारकाधीश, या कई प्रकार के मंदिर है, जगन्नाथ, वहां पर बद्रीनाथ, ये सब जगह वो होकर आए थे, और वो सब इनके सामने आकर के विष्णु के रूप उपस्थित हो गए और उनको ये वरदान दिया, मैं विष्णु चतुर्भुज, तुम भी मेरे जैसे हो। और जब बाबा ध्यान से नीचे उतरे तो बाबा को कुछ समझ में तो आया नहीं कि क्या हुआ, ये क्यों ऐसे हमको दर्शन हुआ। तो बाबा अपने गुरु के पास गए और अपने गुरु से ये प्रश्न किया कि इसका मतलब क्या है, मैं तो इन जैसा नहीं हूं, मैं तो विष्णु का भक्त हूं, मैं तो उनका दास हूं। हम यही मानते ना कि हम तो उनके दास है, हम तो उनके भक्त हैं, हम तो उनके सेवक हैं, पर हम इन जैसे तो नहीं है, ये तो मेरे भगवान है, तो मैं थोड़े इन भगवान जैसा हूं। तो क्यों हमको ये वरदान मिला कि तुम मेरे जैसे हो, ये विष्णु ने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि जब भी किसी भक्त को अपने इष्ट के दर्शन होते हैं ना, तो वो इष्ट उनके सामने आकर उनको क्या वरदान देता है, तथा अस्तु। कोई देवी के भक्त होते हैं तो वो देवी उनके सामने प्रकट हो जाती है और उनको वरदान देती है, तथा अस्तु, माना जो तुम्हारी अंदर इच्छा है वो इच्छा तुम्हारी पूरी होगी, वैसा ही होगा। अब बाबा को इस संसार की और कोई इच्छा नहीं थी, भरपूर थे, कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन सत्य को जानने की इच्छा थी। अब ये जब वरदान मिला कि तुम मेरे जैसे हो, तो ये बाबा को समझ में नहीं आया, तो अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी ये इसका मतलब क्या है, मैं इन जैसे कैसे हूं। तो गुरु को भी इतना पता नहीं चला कि इसका मतलब क्या है, तो मेरे जैसे कैसे हो, हाँ भगवान जैसे तो हम है नहीं। परंतु गुरु ने उनको एक बहुत अच्छी बात कही कि हो सकता है भगवान को आपसे कुछ कार्य कराना है, बहुत बड़ा कार्य भगवान को आपसे कराना है, इसीलिए भगवान का कार्य आपको करना है, तब भगवान ने कहा आप मेरे जैसे हो। फिर उसके मन में आया कि भगवान का मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा कार्य करूं, वो भी तो मालूम हो, दुनिया में तो बहुत कार्य है, तो कौन सा कार्य करूं, मैं दान पुण्य तो करता हूं, बहुत भक्ति करता हूं, मैं क्या करूं उसके लिए जो भगवान का कार्य मैं करूं। तो गुरु ने उनको कहा कि आप उसके लिए एकांतवास में चले जाओ, ये बिजनेस को थोड़ा समय भूल जाओ और ऐसा एकांतवास में चले जाओ और फिर विष्णु का ध्यान करो, तो भगवान आपको संकेत देंगे कि आपको मेरा कौन सा काम करना है। तो बाबा बनारस चले गए, हैदराबाद सिंध में रहते थे, ये 1936 की बात है, 36 की बात है, आज से 87-88 साल पहले। तो कैसे बाबा को जब गुरु ने ये कहा तो बाबा ने सोचा मैं कहाँ जाऊं एकांतवास करने लिए, बिजनेस में तो एकांत मिलता नहीं है। तो बाबा बनारस चले गए, बनारस वाराणसी काशी, तो वहां पर उनके एक मित्र रहते थे जो हमेशा उनको बुलाते थे कि यहाँ आकर के थोड़ा एकांत का अनुभव करो, बहुत बिजनेस कर रहे हो ना, अभी उनसे थोड़ा अपने आप को दूर करो। तो बाबा ने सोचा मैं बनारस जाता हूँ। तो बनारस में बाबा गए और रोज विष्णु का ध्यान करते थे। तो एक दिन बाबा को एक जबरदस्त साक्षात्कार हुआ। क्या था साक्षात्कार, जिसमें बाबा ने कलयुगी दुनिया के महाविनाश का साक्षात्कार किया, तीन रूपों से विनाश देखा, एक अणु युद्ध, बॉम्ब कैसे धरती पर गिर रहे थे और सब आग याग लग रही थी और मनुष्य मर रहे थे, दूसरा विनाश देखा ग्रह युद्ध का, जिसमें आपस में लड़ रहे थे, बंदूकें चल रही थी, तलवारें चल रही थी, बॉम्ब छोटे छोटे एक दो पर गिरा रहे थे और लोग मरते जा रहे थे, और बाबा ने देखा खून की नदियां, चारों ओर खून ही खून और सब मृतक शरीर, सब मर गए, एकदम खून ही खून, सबका नाश हो गया। फिर थोड़े समय के बाद बाबा ने तीसरा दृश्य देखा, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं देखी, प्राकृतिक आपदाएं, पांच तत्व है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो उस बाबा ने देखा कि आकाश से इतनी बिजली चमक रही है, इतने बादल गरज रहे हैं, फिर अचानक बाबा ने देखा बाढ़ आ गई, इतनी बारिश हुई, तो एक तरफ बाढ़ आई, दूसरी तरफ बाबा ने देखा एकदम कहीं सूखा पड़ा है, लोग सूखे के कारण मर रहे हैं, तीसरी तरफ देखा बाबा ने भूकंप आ गया, सब बड़ी बड़ी इमारतें कैसे नीचे गिर रही है। तो कहां बाढ़, कहां भूकंप, कहां आंधी, कहां तूफान, कहां प्रकृति के इतने प्रकोप, और देखते ही देखते बाबा ने देखा सर्वनाश हो गया है, संसार का सर्वनाश। तो बाबा को कुछ समझ में नहीं आया कि ये सर्वनाश मैं देख रहा हूं, क्या ये धरती ऐसे ही खत्म हो जाएगी, फिर हे भगवान आपने ये दुनिया बनाई क्यों, अगर खत्म ही होनी है तो। पर हे भगवान मुझे क्या करना है, मुझे भी तो मेरे गुरु ने कहा कि आप मुझे कुछ काम देंगे करने लिए, क्योंकि आपने वरदान दिया कि तुम मेरे जैसे हो, तो क्या मुझे करना है वो भी तो आप बताओ। अब वो फिर बताए तब, अब ये तो विनाश ही देख लिया। लेकिन फिर थोड़े समय के बाद बाबा को परम धाम का साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति का एक महतत्व बाबा ने देखा, सुनहरा लाल प्रकाश, और उस सुनहरे लाल प्रकाश में छोटे 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 सितारे, जैसे हम आकाश में सितारे देखते हैं ना, तो वैसे सितारे, लेकिन एक उल्टे झाड़ के रूप में, उल्टा झाड़, बीज ऊपर और झाड़ नीचे, ये बाबा ने देखा। और फिर क्या देखा कि उस झाड़ से धीरे धीरे एक एक सितारा धरती पर उतरने लगा, वो ऊपर था, और वहां से धीरे धीरे आकाश से जैसे नीचे उतरता गया उतरता गया, और जैसे ही वो नीचे धरती पर आया, वो एक एक सितारा एक एक देवी और देवता बनता गया, देवी और देवता। और देखते ही देखते बाबा ने देखा कि वो देवी देवताएं चारों ओर विचरण करने लगे और सुंदर संसार बन गया, प्रकृति का सुंदरतम स्वरूप बाबा ने देखा। इतना साफ आकाश, वायु इतनी शुद्ध, पेड़ पौधे हरे भरे, हरियाली चारों तरफ, नदियां इतनी शुद्ध जल के साथ, और इतने बाग बगीचे, इतने फल फूल, और देवी देवताएं विचरण कर रहे हैं। बस बाबा देखता ही रह गया, इतना सुंदर संसार। और फिर बाबा ने देखा उस सुंदर संसार में एक बहुत ही बड़ा महल, सोने का महल, जहां श्री लक्ष्मी और श्री नारायण सोने के सिंहासन पर, हीरो से जड़ा हुआ सिंहासन, उस पर बैठे हैं। और बाबा ने देखा उस महल में भी चारों ओर हीरे जवाहरातों के वो दीवारें जड़ी हुई है, और फिर देखा वो कैसे लक्ष्मी नारायण वो सिंहासन से उठे और बाहर बगीचे में आए, और चारों ओर फवारे फवारे फाउंटेन चारों ओर, और इतनी सुगंध आ रही थी उन फवारों से, जो देखते ही रह गए बाबा। पर बाबा को कुछ समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है। तो अचानक एक आकाशवाणी हुई, बाबा को आवाज सुनाई दी। आवाज क्या सुनाई दी? लखीराज उठो जागो, उठो जागो। अब इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश के बाद ऐसी सुंदर दुनिया आने वाली है, और ये दुनिया तुमको बनानी है, तुमको बनानी है। अब इतना बड़ा काम भगवान ने उनको दे दिया, ये ऐसी सुंदर दुनिया तुमको बनानी है। और बाबा को समझ में नहीं आया कि ऐसी दुनिया मैं कैसे बनाऊंगा। तो ये सब साक्षात्कार करके बाबा को एक विचित्र अनुभूति होने के बाद बहुत मन में वैराग आ गया, इस संसार से वैराग आ गया कि अब ये धंधा वंदा ये सब मुझे अभी नहीं करना है। अब वैराग्य आ गया, लेकिन धंधा तो बहुत बड़ा था। तो बाबा ने सोचा कि अब ये जो मैंने कलयुगी दुनिया का विनाश देखा और फिर एक सुंदर सतयुगी दुनिया को देखा, तो ये भगवान ने मुझे कोई बड़ा काम दिया है, अब उसके लिए मैं धंधा तो नहीं कर सकता हूँ। तो सोचा अब ये सब धंधा मैं खत्म करूं, वाइंड अप कर दूं। तो बाबा बनारस में थे, तो वहां से बाबा कलकत्ता गए, कोलकाता, जहां उनका भागीदार पार्टनर रहता था, और पार्टनर को सब बता दिया कि मुझे क्या क्या साक्षात्कार हुए हैं और भगवान का मुझे बहुत बड़ा काम करना है, तो तो मैं ये धंधा नहीं कर सकता। बाबा जब हीरों को देखते थे तो क्योंकि अंदर में बहुत वैराग आ गया तो बाबा को लगा ये सब पत्थर है, ये हीरे तो जैसे उनको पत्थर दिखाई देने लगे, अब पत्थरों का क्या व्यापार करेगा। तो इसीलिए मैं ये व्यापार नहीं कर सकता हूँ, मैं वापस अपने हैदराबाद सिंध में जाऊंगा और भगवान को जो मुझसे कराना है वो कराएंगे। तो अपना पार्टनर्स को समझा करके अपना जो उनका अपना हिस्सा था वो बाबा ने ले लिया और वापस हैदराबाद सिंध चले गए। लेकिन जब घर में पहुंचे हैदराबाद सिंध में तो बाबा बिल्कुल सिंपल हो गए, नहीं तो कोट पैंट ये सब था क्योंकि राजाओं महाराजाओं से मिलता था, तो अंग्रेजों से मिलता था, लेकिन अब बिल्कुल सिंपल जो पहले पहनते थे। तो 60 वर्ष की तो उनकी आयु हो चुकी थी तो धोती कुर्ता बस यही पहनते थे सफेद। तो कैसे बाबा को देख करके सब हैरान हो गए कि ये बाबा को क्या हो गया है, इतना वैराग आ गया है, क्या परिवर्तन आ गया। लेकिन बाबा को कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि बाबा बिल्कुल न्यारे हो गए एकदम। तो कैसे बाबा को एक दिन अपने ही घर में, हाँ अपने कमरे में बैठते थे एकांत में बैठते थे, तो अचानक उनको एक दिन शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, ज्योति का साक्षात्कार हुआ, ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा ने उनको दर्शन दिया। और उस समय उनके तो वो दर्शन देकर के जैसे बाबा को इतना सुंदर वो अनुभव हुआ और वो ज्योति को देखता रहा देखता रहा देखता रहा, और जैसे देखता रहा अचानक वो जो ज्योति थी, ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का साक्षात्कार हुआ, वो ज्योति उनके करीब आई, उनके निकट आई, और उनके निकट आते 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 उनमें जैसे प्रवेश हो गए, उनके अंदर प्रवेश हो गए। ये बाबा ने देखा कि वो मेरे अंदर आ गए। अब उसके बाद जब बाबा ध्यान से नीचे उतरे तो उनका चेहरा एकदम चमक रहा था, आंखें लाल थी, तो कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि वो जब वो ज्योति उनमें प्रवेश हुई तो उस समय परमात्मा शिव ने उनके मुख से अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया? कि मैं निजानंद रूप हूं, मैं शिव हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं शिव हूं। इनके मुख से ये आवाज निकली। अब उनके रिश्तेदार जो उनकी पत्नी बच्चे बहू वह सब थे घर में, तो उनको ये साक्षात्कार हुआ और वो जैसे उनके मुख से ये आवाज निकली तो उन्होंने तो कुछ समझा नहीं। लेकिन जब ध्यान से नीचे उतरे तो बाबा से पूछा गया, बाबा आपने क्या अनुभव किया? तो बाबा ने कहा कि कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, और वो प्रकाश वो शक्ति मेरे अंदर आ गए, मेरे में प्रवेश हो गए, बस बाकी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जो मुख से आवाज निकली शिव परमात्मा ने अपनी पहचान दी, वो तो उनके रिश्तेदारों ने सुनी, फैमिली मेंबर्स ने सुनी। अब उसके बाद फिर एक विचित्र घटना हुई। अब जो उनके परिवार में थे या कोई उनके मित्र संबंधी में मिलने आते थे तो बाबा का जो वो स्वरूप था ना धोती कुर्ता वाला, वो गायब हो जाता था और बाबा खड़े थे और वो गायब होकर के श्री कृष्ण खड़े हैं ऐसे उनको दिखाई देता था। श्री कृष्ण बांसुरी बजाता हुआ मोर मुकुटधारी पीताम्बरधारी वो खड़े हैं और साक्षात्कार करा रहे हैं, ये उनको अनुभव होने लोगों को अनुभव होने लगा। बस फिर तो एक मानो एक क्रांति हो गई, जो बाबा के सामने आते थे उनको ये साक्षात्कार होने लगता था। अब उनमें से दूसरी क्रांति क्या हुई कि बहनों माताओं को ज्यादा होता था, पुरुषों को नहीं, बहनों को, कुमारियां आती थी, माताएं आती थी, उनको होता था। और उस समय समाज के अंदर बहुत शोषण था नारी का, माताएं जो थी वो शोषित थी, घर के अंदर चार दीवारों में रहना, कहीं बाहर कोई एक्टिविटी नहीं थी, बस अपने घर को ही संभालना, बाल बच्चों को संभालना। और पुरुष लोग जो सिंध वर्की कहलाते थे, सिंधी लोग, बहुत बड़े बिजनेसमैन, इतनी बड़ी बिजनेस उनकी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस, और वो दुनिया भर में घूमते थे। उनकी बिजनेस लंदन, अमेरिका, जापान, हांगकांग, सिंगापुर, सब जगह उनका व्यापार चलता था। और बिचारी माताएं बहनें सब घर के अंदर, कहीं वो बाहर भी नहीं जाती थी। अब ये उस समय की स्थिति थी नारियों की। और अगर किसी का पति गुजर जाता था तो वो बिचारी स्त्री को इतना ताड़ते थे, शोषित करते थे, कि अगर वो कहीं गई भी बाहर किसी दुकान के पास तो वो दुकानदार उनको हटा देते थे कि ये तो अपशगुन आया, ये तो हमारा कुछ नुकसान होगा, ये विधवा आ गई। मानो ऐसा वो वातावरण था उस समय का। लेकिन उसी समय वो राजा राम मोहन रॉय, लाला लाजपत राय, ये सब जो समाज सेवी बने, उन्होंने नारी शक्ति को थोड़ा आगे बढ़ाया। अब ये शिव परमात्मा ने भी नारी शक्ति को आगे बढ़ाया। तो कैसे एक एक करके बाबा के पास आते गए, और केवल बाबा के सामने आकर ही नहीं देखा श्री कृष्ण को, लेकिन घर बैठे भी नारियों को साक्षात्कार हुआ। घर बैठे उनको सुबह सुबह श्री कृष्ण दर्शन दे रहे हैं। और जैसे वो श्री कृष्ण के नजदीक जाती है तो वो पीछे हट करके ब्रह्मा बाबा आगे खड़े हैं, ऐसे देखती थी, सफेद धोती कुर्ता पहन करके, जैसे बाबा उनके सामने खड़े हैं और श्री कृष्ण उनको पीछे से इशारा कर रहे हैं कि मैं ऐसे नहीं मिलूंगा, अगर मेरे से मिलना है तो पहले इनके पास जाओ, है ना, दादा लेखराज के पास जाओ, ब्रह्मा बाबा के पास जाओ। अब सब तो नहीं जानते थे इनको, हैदराबाद सिंध भी कोई छोटा नहीं था, काफी बड़ा था, तो कौन है ये और कहाँ है, कैसे हम उनसे मिले, ये कुछ पता नहीं था। लेकिन श्री कृष्ण उनको स्वप्न में या साक्षात्कार में ये बताते थे। अब उनमें से तो एक मैं आपको मिसाल दूं, जिनको हम मम्मा कहते हैं, जगदम्बा सरस्वती कहते हैं, वो उस समय 17 साल की थी। तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी जो माँ थी वो बहुत दुखी थी, बहुत दुखी, बहुत रोती थी, काले काले कपड़े पहन करके, बाल खुला रख के स्यापा करना, छाती पीटना, न जाने क्या क्या करती थी औरतें अगर उनका पति गुजर जाए तो, बहुत रोती थी। अब ये जो कुमारी थी ये बहुत सुंदर थी और स्कूल में बहुत नाम कमाया, अवार्ड लेती थी, गायन कला, नृत्य कला, संगीत कला, सब कलाओं में होशियार थी। अब अपनी माँ की ये स्थिति देख करके उनको अच्छा नहीं लगता था कि माँ इतना रो क्यों रही है, इतना दुखी क्यों है। तो एक दिन उसको किसने कहा कि आप इसको बाबा के पास ले जाओ, दादा लेखराज के पास ले जाओ, वो वहां कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो इसकी माँ कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी, तो माँ को लेकर गई, तो जैसे माँ ने बाबा को देखा तुरंत उनको बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और इतनी मंत्रमुग्ध हो गई जो जोर जोर से हंसने लगी, एकदम रोती हुई आई और एकदम हंसने लगी। अब ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज बन गई हैदराबाद सिंध में, लोकल न्यूज में तो आता ही है, क्योंकि ये बहुत होशियार थी और सब इसको जानते थे, स्कूल में कैसे उनके जो फंक्शन होते थे उसमें ये डांस करती थी, गीत गाती थी, संगीत बजाती थी, बहुत कुछ करती थी, तो ये भी एक न्यूज बन गई। फिर दूसरा, जो दादी प्रकाशमणि का फोटो देख रहे हैं, वो दादी प्रकाशमणि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका थी, वो उस समय 15 साल की थी। और कैसे उनको घर बैठे ये साक्षात्कार हुआ, घर बैठे। तो घर बैठे उनको सवेरे सवेरे दिखाई दिया श्री कृष्ण, और उनके नजदीक जैसे जाने लगी तो वो पीछे हट गया और ब्रह्मा बाबा आगे खड़े। और श्री कृष्ण कह रहा है मेरे से मिलना है तो पहले इनसे मिलो। अब बाबा को ये जानती नहीं थी, लेकिन ये हैदराबाद सिंध में एक आवाज फैल गया कि जो दादा लेखराज के पास जाता है उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, तो चलो चलो हम भी चले, तुम भी चलो चलो। हाँ, जैसे कहीं दुकान में सेल लगती है ना, तो सेल लगती है जूतों की सेल, फलाने किसी की सेल, तो सब एक दो को कहते चलो चलो सेल है वहां पर, सस्ता मिलेगा, चलो चलो। तो अखबार में आ गया पैसे पैसे साक्षात्कार, दादा लेखराज से कृष्ण के दर्शन, ऐसे अखबारों में आता था। तो लोग बहुत आते थे, तो इनको भी साक्षात्कार घर में हुआ, लेकिन इसने किसी को बताया नहीं। स्कूल पढ़ती थी, तो जब स्कूल में गई तो स्कूल में सब लड़कियां आपस में बात करे कि हम दादा लेखराज के सत्संग में जाएंगे, वहां पर कृष्ण के दर्शन होते, चलो हम चले। लेकिन इसने कुछ बताया नहीं, और ये वही था, ये वही बोल रहे हैं, इनको इतना भी नहीं उस समय पता चला। और कहा कि मैं अपने पहले पिता से पूछूं, क्योंकि पिता से पूछे बिना कुछ एक कहीं भी नहीं जाना, ये बच्चियों को बताया जाता था। तो शाम को जब घर लौटी तो इनके पिता ने इनको कहा कि बेटी तुम वहां जाओ, वहां पर जो जाते ना उनको कृष्ण के दर्शन होते, जाके देख के आओ वहां क्या होता है, कैसे होते कृष्ण के दर्शन, अब हो आप जाओ। अब ये तीनों बातें एक साथ हो गई। अब ये गई अगले दिन अपनी सहेलियों के साथ, और बाबा के पास जैसे गई तो बाबा ओम की ध्वनि कर रहे थे, ओम। और जैसे ओम की ध्वनि कर रहे थे तो कितने ध्यान में चले गए और श्री कृष्ण का दर्शन किया। अब इसने भी किया, वहां जाकर ब्रह्मा बाबा से कृष्ण के दर्शन हुए उनको। अब सब पूरा हुआ, सब चले गए, पूरा हो गया सत्संग। तो उसके बाद बाबा ने इनको बुलाया, क्योंकि ये तो वही बैठी रही ध्यान मग्न होकर के, तो बाबा ने इनको बुलाया। और उस समय बाबा ने एक स्कूल खोला था, लड़कियों का स्कूल खोला था बाबा ने, क्योंकि बाबा ने चाहते थे कि लड़कियों को सच्ची आध्यात्मिक शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को कैसे जागृत करना है उसके लिए अपने यहाँ ही बाबा ने स्कूल खोला था। अब उसके लिए टीचर चाहिए थी, तो बाबा ने दादी प्रकाशमणि जी को, उस समय 15-16 साल की थी, 10वीं कक्षा पढ़ रही थी, तो ये भी गीता बहुत पढ़ती थी और श्री कृष्ण की बहुत पूजा करती थी, तो बाबा ने इनको कहा कि तुम अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पण करोगी। तो इसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं, तो पिता के पास गई, क्योंकि बाबा को टीचर्स चाहिए थे जो गीता का ज्ञान देवे। तो इसीलिए बाबा ने जैसे इनको कहा तो पिता ने उसको कहा कि तुम बच्ची, क्योंकि वो ज्योतिषी भी थे, इनके इनके पिताजी ज्योतिषी भी थे, जन्म पत्री बनाई थी इसकी, और उस जन्म पत्री में इसने अनुभव किया पिता ने कि मेरी बेटी मीराबाई की तरह बनेगी, भगवान को अपना जीवन अर्पित करेगी। तो पिता ने तो कहा तुम्हारा तो जीवन ही अब भगवान को अर्पित है। तो अपने उसने पत्र लिख करके दिया कि मैं अपनी बेटी को समर्पित करता हूँ। और बाबा ने उसको स्कूल में टीचर के रूप में रखा ताकि आध्यात्मिक ज्ञान उनको दे सके। और देखते ही देखते एक अलौकिक परिवार बन गया, बहुत सारे आए, परिवार के परिवार आए, उसमें कुमारियां ज्यादा थी, तो वो अलौकिक परिवार बाबा के घर में ही रहने लगा। बहुत बड़ा घर था बाबा का हैदराबाद सिंध में। और फिर बाबा शिव परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा एक आदेश दिया सबको, क्योंकि ज्ञान तो सुनाते थे, आदेश दिया कि अब अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। तो पवित्र और योगी बनाना है, ये सब ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। वो कुमारियां, छोटी 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 कुमारियां भी थी, सबसे छोटी 6 साल की थी और सबसे बड़ी तो 20 साल की थी, जो आज हमारी दादियां जिनको हम कहते हैं, तो वो उस समय थी, ये 1936 की बात है। अब जब परमात्मा ने प्रतिज्ञा कराई कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे, तो थोड़ा विरोध हुआ कि ऐसे कैसे कह दिया बाबा ने, ये छोटी छोटी कुमारियां अगर ये पवित्र योगी बन जाएंगी तो संसार कैसे चलेगा, अभी तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाए 18 साल की हो तो बने। तो बाबा कहते थे कि ये मैंने नहीं कहा है, ये मेरा आदेश नहीं है, क्योंकि वो तो ब्रह्मा बाबा को देखते थे, ये परमात्मा का आदेश है, ये परमात्मा ने कहा है और मुझे भी यही आदेश दिया। मैं भी तो गृहस्थी था, मेरा परिवार तो मेरे साथ ही है, हमने कोई छोड़ा थोड़ी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। और वो बच्चे तो पढ़ने के लिए आते थे, स्कूल में पढ़ने लिए और भी सत्संग करने के लिए आते थे, तो ये मैंने, मेरी शक्ति नहीं है, ये भगवान की शक्ति काम करे। तो कईयों ने विरोध किया, लेकिन बाबा ने कहा अगर आपके बच्चे हैं और आप समझते हो ये छोटे हैं, ले जाओ, मना तो है नहीं। तो जो 18 साल से कम थे उनको तो गए, लेकिन उसके ऊपर भी थे आयु के, तो फिर बाबा ने क्या किया, वो हैदराबाद से बाबा कराची चले गए। हैदराबाद और कराची 4 घंटे का अंतर था, हैदराबाद छोटा शहर और कराची बड़ा शहर, जैसे मुंबई और पूना, मुंबई और पूना, मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है लेकिन पूना उनसे थोड़ा छोटा है। तो बाबा हैदराबाद से कराची चले गए बड़े शहर में, और वहाँ करीब 350 भाई बहनों ने अपना जीवन तपस्या में बिताया। तो ये उसमें छोटी छोटी कुमारियां भी थी, परिवार के परिवार भी थे। तो कैसे वो कराची में, वो क्योंकि सागर का किनारा है कराची, जैसे मुंबई में जुहू बीच है, चौपाटी है, वैसे कराची में क्लिफ्टन बीच है, क्लिफ्टन बीच सागर का किनारा, बहुत सुंदर है, उस समय बहुत सुंदर था। तो ये सब वहां पर सवेरे सवेरे सैर करती थी, एक्सरसाइज करती थी और सागर के किनारे बैठ करके तपस्या करती थी। और कैसे दुनिया की निगाहों से बहुत दूर तपस्या करना और एक्सरसाइज करना, और उसमें शॉर्ट्स और शर्ट पहन करके जब भी जाती थी, यंग थी बहुत, तो भगवान ने उनको तैयार किया उस नई दुनिया की स्थापना के लिए, निमित्त बनाया, इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। बस फिर तो तपस्या बाबा भी करते थे, मम्मा भी करती थी, तो बाबा तो 60 वर्ष के थे और मम्मा तो 17-18 साल की थी, तो बहुत अंतर था, कोई लौकिक में कोई संबंध नहीं था, लेकिन ये अलौकिक माँ बन गई और अलौकिक माँ के रूप में सबकी पालना की, और ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता के रूप में पालना की। परंतु उनका एक ही लक्ष्य था कि परमात्मा एक है, हम सब आत्माएं हैं, सब भाई भाई है, ये सब जो देह के धर्म है इनका त्याग करो, अपने को आत्मा समझो, एक विश्व परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम है, ये उनको ज्ञान मिला। और 14 साल कराची में रह करके इन्होंने तपस्या की, 14 साल 1937 से लेकर 37 से लेकर 1950 तक, 14 साल दुनिया की निगाहों से बिल्कुल दूर, और अंदर ही अंदर बहुत साक्षात्कार करते थे, वैकुंठ देखते थे, श्री कृष्ण की दुनिया देखते थे, तपस्या करते थे। परंतु इन्हीं 14 सालों में दुनिया में बड़ा परिवर्तन आया, 3 परिवर्तन आए। एक परिवर्तन था कि विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, दूसरा विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें अमेरिका इंग्लैंड एक तरफ थे और जर्मनी जापान ये सब दूसरे तरफ थे। और उसी समय जैसे परमात्मा ने 1936 में नई दुनिया की स्थापना का कार्य शुरू किया, उसी समय अमेरिका के अंदर एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। एटम बॉम्ब तो वो कैसे, उसके बाद जब 1945 में विश्व युद्ध कैसे खत्म हुआ, जब अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब गिराया और हिरोशिमा नागासाकी दो बड़े शहर एकदम तबाह हो गए, खत्म हो गए, शहर के शहर नष्ट हो गए वो बॉम्ब अटैक से। और जापान जर्मनी ने सरेंडर किया, अमेरिका जीत गया और विश्व युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन लाखों लोग मारे गए उस समय, लाखों लोग। लेकिन विश्व युद्ध समाप्त हुआ और दुनिया का नक्शा बदल गया। यूरोप के कई देश वो कम्युनिस्ट हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, रशिया से मिल गए, अमेरिका अलग रशिया अलग हो गया। और फिर कैसे रशिया ने उनको अपना बना लिया, मानो ये नक्शे में परिवर्तन आ गया, यूएसएसआर बना। और दूसरा परिवर्तन क्या आया, वहां पर वो बलूचिस्तान जो पर पाकिस्तान जो उस समय तो एक भारत ही था, वहां बहुत बड़ा भूकंप आया था, क्वेटा शहर में बड़ा भूकंप आया था और सारा शहर का शहर खत्म हो गया, पूरा धरती के अंदर समा गया पूरा शहर, इतना जबरदस्त भूकंप आया था। और तीसरी तरफ कैसे गृह युद्ध हुआ भारत में 1947 में, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो 1947 में ये बंटवारा हुआ और कैसे हिंदू लोग वहां पाकिस्तान से भारत में आए और इतने लोगों को मार डाला, बात मत पूछो, लाखों लोग मारे गए उस समय क्योंकि बंटवारा हुआ। और वहां मुसलमान और फिर वो जो हिंदू थे वो तो उनको कहा कि तुम हिंदुस्तान चले जाओ, अभी ये मुस्लिम राज्य हो गया, या तो मुसलमान बन जाओ या तो सिर कटवाओ, बस और कोई रास्ता नहीं। तो हिंदू लोग कैसे हाथ खाली, बिल्कुल नंगे पैर, जेब खाली, सब कुछ धंधा नौकरी जो भी उनका था, बिजनेस व्यापार सब छोड़ करके, सब खेती बाड़ी सब छोड़ करके हिंदुस्तान में आ गए। और कई तो कच्छ में आकर के रहे, क्योंकि उस समय कच्छ में उनको स्थान दिया। ये तो सब जो रेफ्यूजी बन करके कराची से, पाकिस्तान से, लाहौर से, वो सब आए थे, गांधीधाम में बहुत आकर के रहे, बहुत सारे रहे, कई जगह रहे, गुजरात में काफी जगह रहे, वो बस्तियां बस गई। लेकिन बहुत नुकसान हुआ, बहुत मर गए। अब ये तीन बातें हुई जो बाबा ने एक रिहर्सल के रूप में देखी थी, अणु युद्ध भी हुआ, गृह युद्ध भी हुआ और प्राकृतिक आपदाएं भी आई, भूकंप भी आया। तो बाबा से पूछते थे, बाबा यही विनाश है क्या? तो बाबा कहते थे ये तो एक ट्रेलर है, जैसे पूरी फिल्म का पहले ट्रेलर दिखाते हैं ना, छोटा सा उसका ट्रेलर होता है जैसे एक रिहर्सल टाइप, तो वो दिखाया। अभी तो विनाश तो अभी बहुत आगे है। तो परंतु ये बहनें तपस्या करती रही करती रही और 1950 में, 1947 के बाद भी इनकी तपस्या चलती रही। लेकिन शिव परमात्मा ने कहा कि अभी आपको कहीं जाना नहीं है, तो वहीं तपस्या की। और कैसे परमात्मा ने उनकी रक्षा की, उनका बाल भी बांका नहीं किया। लेकिन 1950 में जब भारत गणतंत्र बन गया 26 जनवरी को, तो उसके बाद शिव परमात्मा ने इन बाबा को संकेत दिया कि अभी भारत में जाओ, क्योंकि शांति हो गई, गणतंत्र बन गया, दोनों देश अलग हो गए। तो बाबा ने कहा कि अभी भारत देश विश्व गुरु बनेगा, भारत देश में फिर से वही सत्युग की दुनिया आएगी। भारत देश में दूध और घी की नदियां फिर से बहेगी, फिर से वो स्वर्ग आएगा और सारे विश्व को शांति का संदेश भारत से मिलेगा। ये बाबा शिव परमात्मा ने उनको आदेश दिया और कहां जाओ ये भी बताया साक्षात्कार में कि एक पहाड़ पर जाओ। तो पहाड़ पर कहां जाए, तो फिर कई आए यहां देखने यहां कौन सा हिल स्टेशन है, तो ये आबू का हिल स्टेशन कराची के बहुत नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। तो कैसे 1950 में इन्होंने अपना सब सामान लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। उस समय जो सिंधी लोग आए या मुल्तानी आए, सिख लोग आए वहां से, वो सब छोड़ के आए, लेकिन बाबा के जो बच्चे थे उन्होंने एक सुई भी नहीं छोड़ी, क्योंकि बाबा के मित्र कुछ नहीं छोड़ा, सब लेकर आए, पाकिस्तान छोड़ दिया। तो उनके बाबा के एक मित्र थे जो उस समय सिंध प्रांत के चीफ मिनिस्टर थे, वो बाबा के दोस्त थे, तो उन्होंने उनको सब सुविधा दी और एक जहाज दिया, एक पूरा जहाज, और सब सामान लेकर के आए। तो कैसे आए भारत में, जहाज में आए 385 भाई बहने, आप सोचो पूरा जहाज भर करके सब सामान लेकर के आए। और कराची से ओखा बंदरगाह पर आए, ओखा जो सौराष्ट्र में ओखा बंदरगाह है ना, वहां पर जहाज आते हैं, ओखा जामनगर के पास ओखा है, तो वहां पर ये जहाज उतरा। और फिर वहां से ये अंदर जहाज में बैठे हैं, करीब एक घंटा एक दो घंटा लगा होगा कराची से ओखा बंदरगाह आने में, और वहां से फिर ट्रेन से आबू रोड आए। तो उस समय की ट्रेन है ये, 1950 की ट्रेन है। तो 14 साल के बाद इन्होंने दुनिया देखी, क्योंकि 14 साल अंदर ही थे। और जब उस समय की ये ट्रेन में रेलिंग वेलिंग कुछ नहीं थी, तो एकदम सिर बाहर निकाल करके देखने लगे जब आबू रोड पहुंचे। तो आबू रोड स्टेशन पहुंचे उस समय जिस प्रकार अभी है वैसे नहीं था, बहुत सिंपल था। तो ये बिल्कुल सिंपल ड्रेस में आबू रोड पहुंचे और फिर माउंट आबू आए। अब ये जो माउंट आबू है, यहाँ हम लोग तलेटी में हैं, आबू रोड पर है, माना पहाड़ जहाँ खत्म होता है इस स्थान पर ये शांति वन है, लेकिन जो हमारा मूल स्थान है वो पहाड़ पर है माउंट आबू में। तो माउंट आबू जो है ये राजाओं का स्थान था, राजाएं महाराजाएं गर्मी के दिनों में अपना कैपिटल राजधानी आबू बनाते थे। तो यहाँ पर माउंट आबू में कई महल बने हुए हैं, जयपुर पैलेस, जोधपुर पैलेस, बीकानेर पैलेस, कई जो राजस्थान के छोटे छोटे वो रजवाड़े थे उस समय जो अभी डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, उन सब के राजाओं के महल ऊपर बने हुए। तो जब गणतंत्र हो गया, माना सारी राजाई खत्म हो गई, सब प्रजातंत्र में आ गए, तो उस समय इन राजाओं ने इन बड़े महलों को होटल बना दिया है। माउंट आबू में सब होटल है, चारों ओर होटल है, जयपुर पैलेस, बीकानेर पैलेस, जोधपुर पैलेस, ये सब होटल बन गए। तो या तो होटल है या तो हॉस्टल है, क्योंकि बच्चे वहां रहते, और या तो स्कूल है। तो दूर दूर से बच्चे यहाँ माउंट आबू में पढ़ने आते हैं, स्कूल पढ़ते हैं यहाँ, और हॉस्टल है, तो इसीलिए ये सब महल उसी में बदल गए, अभी भी है। और वो बताते कि कैसे जब राजाएं महाराजाएं आते थे, इतने ठाट से आते थे, तो अप्रैल मई जून ये तीन महीना वो यहाँ गर्मी के दिनों में अपना वो राजधानी माउंट आबू बनाते थे। तो अभी जो माउंट आबू है ये पर्यटक स्थल है, इस पर्यटक स्थल में स्कूल्स बहुत हैं और हॉस्टल बहुत हैं, होटल बहुत हैं, और मंदिर बहुत है, बहुत है। तो आप लोगों ने देखा होगा, या कल आपके शायद जाने का दिन या परसों, तो आप जाएंगे देखेंगे। तो कैसे ये माउंट आबू आना हुआ, और उस समय ये जंगल था, पूरा जंगल, खाली महल थे पर बाकी जंगल। तो बाबा कैसे जंगल में तपस्या करते थे, मम्मा भी तपस्या करती थी। और फिर उसके बाद 1952 में, 50 में आए, तो 1952 में हमारा पहला केंद्र दिल्ली में खुला, क्योंकि निमंत्रण मिला, निमंत्रण मिला। एक हमारी बहन थी जिनके परिवार वाले दिल्ली में रहते थे, उनको निमंत्रण मिला कि आपने जो 14 साल तपस्या की है, हमें भी आकर के वो ज्ञान दो। और तो ये दिल्ली गई और वहाँ अपने घर में ओम की ध्वनि करती थी, और जैसे ओम की ध्वनि की, इनसे देवी का साक्षात्कार होने लगा। तो मंदिरों ने निमंत्रण दिया, मंदिर वालों ने, कि हमारे पास दर्श, हमको यहाँ ज्ञान सुनाओ और ओम की ध्वनि करो और सत्संग करो। तो ये वहां जाती थी तो भक्तों को इनसे जो देवी का साक्षात्कार होता था, तो एक मंदिर से दूसरा मंदिर, दूसरे से तीसरा मंदिर, और दिल्ली में तो बहुत मंदिर है, तो वहां पर वो जाती रही। फिर इतनी भीड़ हो गई, जो जमुना किनारे, दिल्ली में जमुना किनारा है, वहां उसने सत्संग शुरू किया। एक महीने तक लगातार वो सत्संग कराती रही। तो फिर उन्होंने कहा हम तो वापस जाएंगे माउंट आबू। तो लोगों ने कहा माउंट आबू जाएंगे तो हमारा क्या होगा, आप चले जाएंगे तो फिर यहाँ हमको कौन ज्ञान सुनाएगा। तो बाबा ने उनको कहा कि अगर ये चाहते हैं कि आप सत्संग करते रहो, तो उनको बोलो एक मकान लेकर दो, आप मकान लेकर दीजिए तो हमारी बहनें वहाँ सत्संग करेगी और आप उस मकान में आ जाएं। तो हमारा पहला सेवा केंद्र आबू से बाहर दिल्ली में खुला 1952 में, 52 में हमारा पहला सेवा केंद्र खुला। और फिर धीरे धीरे औरों ने निमंत्रण दिया, रिश्तेदारों ने, कि हमारे बेटियां सब आ गए हैं भारत में, तो वो तो पहले ही आ गए थे, तो उन्होंने निमंत्रण दिया और ये सत्संग करने जाते थे। फिर वहां से भाई बहने सब माउंट आबू आते थे। फिर मम्मा भी जाने लगी, मम्मा को निमंत्रण मिलने लगा, तो ये लखनऊ गई है, कानपुर गई है, बहुत निमंत्रण मिले, और जहां ये जाती थी वहां सेवा केंद्र खुलते जाते थे। इसी प्रकार भारत के कोने कोने में हमारे सेवा केंद्र खुलते गए। पर मम्मा की बहुत बड़ी तपस्या थी, मम्मा के साथ जो दादी प्रकाशमणि थी वो साथ साथ ही होती थी, तो दादी प्रकाशमणि मम्मा को देखती थी कैसे कितनी तपस्या करती है, तो उनको मुन्नी मम्मा कहते थे, माना मम्मा का जैसे तीसरा तीन हिस्सा, बिल्कुल मम्मा की तरह ही थी दादी प्रकाशमणि। और फिर मम्मा जगदम्बा सरस्वती जिन्हें कहते हैं, वो धीरे धीरे कैसे विदेही अवस्था को प्राप्त किया, और 24 जून 1965 में 24 जून को मम्मा ने 47 वर्ष की उम्र में अपना देह त्याग किया, बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, और अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया। फिर उसके बाद दीदी मनमोहिनी जो वो मुख्य प्रशासिका बनी, दीदी दिल्ली में रहती थी। इनकी विशेषता है कि ये बहुत धनी परिवार की थी, सिंधी परिवार, लेकिन धनी परिवार, और धनी इतना जो जब ये सब सिंधी लोग वापस भारत में आए तो मुंबई में ज्यादा रहे, तो मुंबई में एक तो इन्होंने हॉस्पिटल खोला, जो आजकल जसलोक हॉस्पिटल है मुंबई में, ये जसुमती लोकुमल ये युगल थे, इनके चाचा चाची थे, वो धनी परिवार के थे, तो उन्होंने हॉस्पिटल खोला जसलोक हॉस्पिटल। और केसी कॉलेज, किशनचंद चेलाराम कॉलेज, ये भी सिंधियों ने खोला, तो वो भी इनके ही परिवार वाले थे, तो मानो उस धन उस परिवार की थी। लेकिन इनको भी शुरू में बहुत त्याग हुआ, बहुत साक्षात्कार किए, गोपी इनका नाम था, और कैसे बाबा को जैसे देखा तो बहुत साक्षात्कार किए, तो एकदम समर्पित हो गए। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगी, फिर बाबा भी बाहर जाने लगे और फिर परिवार के परिवार माउंट आबू आते थे, ये पंजाब से परिवार आया है, फिर कैसे इसमें बच्चे बड़े सब आते थे बाबा से मिलने माउंट आबू में। और फिर बाबा उनकी बहुत अच्छी पालना करते थे, पिता का प्यार मिलता था, तो शिव पिता और ब्रह्मा पिता कैसे सबकी पालना करते थे। और फिर तो बाबा ने एक ही मुख्य ज्ञान दिया कि सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है, ज्योति स्वरूप है, वो निराकार है, वो शिव है, वो कल्याणकारी है, तो एक परमात्मा की याद दिलाई। तो बाबा के पास बहुत पत्र आते थे, तो बाबा उन पत्रों का जवाब भी देते थे, सिंधी लिखते थे क्योंकि वहां पर सिंधी चलती थी, उर्दू जैसी होती है तो वो चलती थी। तो वहां पांडव भवन में आप जाएंगे, वहां बाबा की झोपड़ी है, वो झोपड़ी में बाबा बैठ करके पत्र लिखते थे। तो इस झोपड़ी में जाकर के अभी हम तपस्या करते हैं। बाबा के दिनों में ये बहुत सिंपल थी, जो वहां माउंट आबू में खजूर के पेड़ बहुत है, जंगली खजूर, तो वो खजूर के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, लंबे लंबे पत्ते होते हैं, उन पत्तों से बाबा हर साल झोपड़ी बनवाते थे, अंदर बहुत ठंडक होती थी। तो और लेकिन बाबा के देह त्याग के बाद उसको परमानेंट शेप दे दिया है, तो ये बाबा की झोपड़ी का एक रूप है। ये झोपड़ी के बाहर है, बगीचा है चारों तरफ, वो पांडव भवन में आप जाएंगे तो देखेंगे। फिर दूसरा है ये हिस्ट्री हॉल, जहाँ चारों ओर चित्र लगे हुए हैं, ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो चित्र आपको दिखाए वो सब वहाँ दीवार पर लगे हुए हैं, जहाँ पर बाबा बैठ करके वाणी चलाते थे। तो ये हिस्ट्री हॉल है, इस हिस्ट्री हॉल में लगभग 200 भाई बहने बैठ सकते हैं। और फिर धीरे धीरे ये छोटा पड़ने लगा, फिर बड़ा हॉल बनाया जिसको मेडिटेशन हॉल वो कहते हैं, वो भी छोटा होने लगा। फिर पांडव भवन के सामने एक और बड़ा हॉल बनाया है, वो जिस जहाँ 3,000 बैठ सकते हैं, वो सब पांडव भवन में है, तो वो आप जाएंगे तो देखेंगे। फिर ये बाबा का कमरा है जहाँ बाबा रहते थे, उनका बेड है, सिंपल है, वही का वही रखा है, बाबा के दिनों का जैसे था वही का वही है। बाबा नीचे गद्दी बिछी हुई है जहाँ बाबा बच्चों से मिलते थे। और 18 जनवरी के दिन बाबा ने अपना देह त्याग किया, 93 वर्ष की उम्र में, 93 वर्ष। और अंत तक बाबा बिल्कुल सीधा बैठते थे, एकदम सीधा, कभी चश्मा नहीं पहना, कभी लकड़ी नहीं उठाई, अंत तक। तो बाबा 93 वर्ष 93 साल की उम्र में शरीर छोड़ा और अव्यक्त फरिश्ता बने। और पांडव भवन के अंदर ही एक स्थान खुला था जहां उनका पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया, जिसको हम शांति स्तंभ कहते हैं, ये ब्रह्मा बाबा की समाधि है। 18 जनवरी 1969 को बाबा ने देह त्याग किया और शिव परमात्मा ने ये संकेत दिया कि अभी इसी शांति स्थान से सारे विश्व में शांति का संदेश जाएगा। और बाबा कहते थे कि तुम्हें शांति स्तंभ बन करके शांति के प्रकंपन सारी दुनिया में देने हैं। तो ये शांति स्तंभ है जहां 18 जनवरी को हर साल बहुत भाई बहने आते हैं और तपस्या करते हैं। तो आप जब जाएंगे तो वहां आप देख सकते हैं, आप बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे। इसको हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा के चार धाम। जैसे भारत में उत्तराखंड में चार धाम है ना, कि हम वहाँ गंगोत्री, जमुनोत्री और ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो ये ब्रह्मा बाबा के चार धाम, जिसमें शांति स्तंभ, बाबा की हिस्ट्री हॉल और बाबा की झोपड़ी और बाबा का कमरा, ये चार धाम आप जरूर देखना, वहां पर थोड़ा बैठना और अनुभव करना कैसे बाबा तपस्या करते थे वहां। और बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी प्रकाशमणि जी मुख्य प्रशासिका बनी 1969 से लेकर के 2007 तक। तो 2007 में दादी जी ने 85 साल की उम्र में अपना देह त्याग किया। तो दादी प्रकाशमणि मुख्य प्रशासिका बनी। तो दीदी मनमोहिनी जी तो थे ही, तो दीदी जी और दादी जी दो हंसों का जोड़ा बन करके इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया और दिन दुगनी रात चौगनी गति से इस विश्वविद्यालय की प्रगति होती गई। तो दादी दीदी को कभी भी हमने नहीं देखा कि वो अलग अपनी राय दे, वो अलग अपनी राय दे। दोनों का मेल मिलाप इतना सुंदर था, जो इतना मिल करके सारे विश्व में ये संदेश देने के लिए निमित्त बने। और फिर ये सब उस समय जो छोटी छोटी आई थी, तो 1969 के बाद तो ये सब वरिष्ठ बन गए थे, कोई 50 साल 60 साल 70 साल के। तो हमारी दादियां जिन्होंने हम लोगों की पालना की और हमें प्रेरणा दी, तो दादी माना बड़ी बहन को कहते हैं। और फिर 1972 में 1972 में हमारा पहला सेवा केंद्र भारत से बाहर लंदन में खुला। तो ये 74 में पहला ग्रुप लंदन से अबू आया है। और फिर 1983 में पांडव भवन के सामने यह ओम शांति भवन बनाया, जहाँ 3000 भाई बहने बैठ सकते हैं, तो वो भी आप देखेंगे। और 1987 में हम लोगों ने बहुत बड़ा संत सम्मेलन रखा था, जिसमें भारत के कई संत महात्माएं, महामंडलेश्वर महंत कई आए थे, बनारस के, हरिद्वार के, ऋषिकेश के, सब तरफ से आए थे और ये सम्मेलन रखा था। तो कैसे ब्रह्मा कुमारियां सफेद वस्त्रधारी और ये साधु संत महात्माएं गेरुआ वस्त्रधारियों का मिलन हुआ। और फिर 91 में ज्ञान सरोवर जो हमारी एकेडमी है उसकी जमीन मिली और वहां पर एक बहुत सुंदर सारा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है ज्ञान सरोवर माउंट आबू में, पांडव भवन से 4 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर अलग अलग जो वर्ग है उनके प्रोफेशनल ग्रुप्स उनके प्रोग्राम्स होते रहते हैं। इस समय विदेशियों का प्रोग्राम वहाँ चल रहा है। और 1991 में ही माउंट आबू में पांडव भवन से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ये ग्लोबल हॉस्पिटल बनाए, जहाँ पर 50% जो स्टाफ है, डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ जो भी है, वो सब समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ के गांव गांव में जाते हैं, ये ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी एरिया है सारा, तो वहाँ गांव गांव में बहुत बीमारियां हैं, तो ये डॉक्टर्स वहाँ फ्री सेवा करते हैं, वहाँ कैंप लगाते हैं। और चारों ओर ये जा करके अपना वैन है वहाँ पर, उसमें जाते हैं और सेवाएं देते हैं, और दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, बहुत डोनेशंस मिलते हैं देश विदेश से और ये सेवाएं यहाँ चलती है ग्लोबल हॉस्पिटल में। और फिर ये जहाँ आप बैठे हैं ये डायमंड हॉल है, 1996 में जब इस संस्था के 60 साल हुए थे, 1936 से 1996 60 साल हुए थे, तब यहाँ शांतिवन में निर्माण का कार्य हुआ और ये हॉल बना। तो इस हॉल में करीब 20,000 भाई बहने बैठ सकते हैं, यहाँ कोई पिलर नहीं है, तो ऐसे हॉल में आप बैठे हो, लेकिन क्योंकि अभी कम है आप सभी, 2-3 हजार के अंदर है, तो ये यहाँ पर्दा लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ 20,000 25,000 भी आते हैं तो ये एक सारा कॉम्प्लेक्स में इतने हजारों लोग रह सकते हैं, परंतु कई बार वो भी कम पड़ जाता है तो टेंट लगाने पड़ते हैं, इतना सब मकान होते हुए भी। और चारों ओफ और हमारा यहाँ ट्रॉमा सेंटर है, नर्सिंग कॉलेज है, बहुत कुछ है, बूढ़ा घर है, हाँ, जिसको हम शिवमणि होम कहते हैं, यहाँ है चारों तरफ। नदी किनारे भी एक बहुत बड़ा मानसरोवर है, और यहाँ इस तरफ जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मनमोहिनी वन कहते हैं, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ टीचर्स बहनों की ट्रेनिंग होती है, कुमारियों की ट्रेनिंग होती है, एक आनंद सरोवर है, और पूरा सोलर प्लांट है चारों तरफ, तपोवन है जहाँ खेती होती है, तो बहुत कुछ है यहाँ शांतिवन में। क्योंकि फिर माउंट आबू में मकान नहीं बना सके, वहाँ पर बंधन आ गया कि माउंट आबू में अभी कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, तो इसीलिए ये स्थान को बढ़ाया है। और हजारों भाई बहने आते हैं, देश विदेश के आते हैं यहाँ। देखिए जब ये पूरा हॉल खुलता है तो हजारों भाई बहने यहाँ बैठ करके यहाँ तपस्या करते हैं, क्लासेस करते हैं। तो दादी प्रकाशमणि जी ने इसको बहुत बढ़ाया, आगे बहुत बढ़ाया, और इतने सारे मकान जो आप देख रहे हो। और 85 साल की उम्र में दादी ने देह त्याग किया, और दादी जी की स्मृति में यह प्रकाश स्तंभ बना है इस हॉल के सामने। प्रकाश स्तंभ है दादी प्रकाशमणि के नाम से। तो 25 अगस्त 2007 दादी प्रकाशमणि ने अपना देह त्याग किया, और यहाँ प्रकाश स्तंभ में इनका मानो समाधि है, जहाँ अंतिम संस्कार दादी जी का किया गया था। और उसके बाद दादी जानकी जी हमारी मुख्य प्रशासिका बनी। दादी जानकी जी की उम्र 104 साल की उम्र में दादी जानकी ने अपना देह त्याग किया, वो भी हैदराबाद सिंध के ही थे। और दादी जानकी ने अपना देह त्याग किया तो यहाँ शक्ति स्तंभ बना है, बिल्कुल यहीं सामने जाएंगे तो शक्ति स्तंभ है जहाँ दादी जानकी जी के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया था। तो प्रकाश स्तंभ दादी प्रकाशमणि जी का, और शक्ति स्तंभ दादी जानकी जी का। और फिर हमारी दादी जानकी भी बहुत बहुत सेवा की, विदेशों में जितने सेवा केंद्र खुले वो दादी जानकी जी ने जाकर के अपने शिव परमात्मा का संदेश वहां दिया, तभी इतने 137 देशों में अपने सेवा केंद्र खुले। तो वो भी बहुत सेवा करती थी। ये टीचर्स का ट्रेनिंग सेंटर है या दादी प्रकाशमणि ट्रेनिंग सेंटर, वो भी वहाँ भी देखा होगा आपने, वहाँ ट्रेनिंग करते रहते हैं। और 1,00,000 की सभा में भी दादी जी ने भाषण किया था। और दादी जानकी के साथ सह मुख्य प्रशासिका थी दादी हृदय मोहिनी जी, ये साल ही अपना देह त्याग किया, और उनका भी यहाँ स्मारक बना हुआ है अव्यक्त लोक। तो वो अव्यक्त लोक जहाँ दादी हृदय मोहिनी जी का की समाधि है, पिछले साल उन्होंने देह त्याग किया। और अभी दादी रतन मोहिनी जी है जिनकी उम्र 99 वर्ष है, 99 ईयर्स, लगभग 100 साल की होने जा रही है, वो इस समय मुख्य प्रशासिका है। और कैसे 100 साल का उनका बड़ा प्रोग्राम रखेंगे। तो ये है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पूरा इतिहास। और दादी हृदय मोहिनी जी की ये विशेषता थी कि वो बहुत ट्रांस में जाती थी, ट्रांस में साक्षात्कार बहुत करती थी, और वो माध्यम बनी, शिव पिता और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा उनमें प्रवेश करती थी और वाणी चलाती थी, जिनको हम अव्यक्त वाणी कहते हैं। और उस समय अव्यक्त बाप दादा कैसे गुलजार दादी के तन में आकर के वाणी चलाते थे, तो उस समय उनका चेहरा सब बदल जाता था, अनुभव होता था कि ये परमात्मा की वाणी हम सुन रहे हैं। और ये हम लोग अपने पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी ट्रांसमिट करते हैं, कईयों ने देखा होगा, जिन्होंने देखा ये प्रोग्राम वो हाथ उठाएं, थोड़ों ने देखा है, तो अवश्य आप जानकार हैं। तो दादी हृदय मोहिनी जी का भी अव्यक्त आरोहण हुआ 13-12 मार्च को शिवरात्रि के दिन, और ये अव्यक्त लोक उनका बनाया गया है। अभी ये है सारा इतिहास। तो ये 86 वर्षों का इतिहास आपको 86 मिनटों में सुना लिया सारा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, अभी आप समझ गए कि आप कहाँ आए हो। चलो ओम शांति। अभी हम सब 2 मिनट फिर से शांति में बैठेंगे, शिव पिता को याद करेंगे।
भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिन में स्थान लिया, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, भारत की भूमि पर। जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण, एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन, अमृत वाणी बरसा के, सबका जीवन सुखदाई किया, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने